चौथे स्कंद के चौदहवें अध्याय पर चर्चा है, राजा वेन की कथा। मैत्रेय उवाच भृगवादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तसर्यति वैनृणां पश्यन्तः पशुसाम्यताम्। मैत्रेय उवाच भृगवादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्यस्ति वैनृणां पश्यन्तः पशुसाम्यताम्। मैत्रेय उवाच भृगवादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्यस्ति वैनृणां पश्यन्तः पशुसाम्यताम्। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, भृगु आदयः, भृगु इत्यादि ते वे सब मुनयः मुनिगण लोकानाम लोगों की क्षेम दर्शिनः कुशल चाहने वाले गोप्तरी राजा की असति अनुपस्थिति में वै निश्चय ही नृणाम समस्त लोगों का पश्यंतः जानते हुए पशु साम्यताम पशुतुल्य जीवन। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे महावीर विदुर, भृगु इत्यादि ऋषि सदैव जनता के कल्याण के लिए चिंतन करते थे। जब उन्होंने देखा कि राजा अंग की अनुपस्थिति में जनता के हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया, तो उनकी समझ में आया कि बिना राजा के लोग स्वतंत्र एवं असंयमी हो जाएंगे। तात्पर्य, इस श्लोक में क्षेम दर्शिना शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका संदर्भ उन लोगों के लिए है जो सदैव जनता की भलाई की चाह रखते हैं। भृगु की अगुवाई में समस्त ऋषि सदैव सोचते रहते थे कि ब्रह्मांड भर के लोगों को किस प्रकार आध्यात्मिक स्तर तक उठाया जाए। निसंदेह वे प्रत्येक लोक के राजा को जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जनता पर शासन करने का उपदेश देते रहते थे। ऋषिगण राजा अध्यक्ष अथवा राजा को सलाह देते थे और वह उनके आदेशों के अनुसार प्रजा पर शासन चलाता था। राजा अंग के लोप हो जाने पर ऋषियों के आदेशों को पालने वाला कोई न रहा। इससे सभी नागरिक यहाँ तक उनचखल हो गए कि उनकी तुलना पशुओं से की जाने लगी। जैसा कि भगवद गीता में वर्णन है, मानव समाज को गुण तथा कर्म के अनुसार चार आश्रमों में विभक्त कर देना चाहिए। प्रत्येक समाज में बुद्धिमान वर्ग, प्रशासक वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग होना चाहिए। आधुनिक प्रजातंत्र में यह वैज्ञानिक विभाजन अस्त व्यस्त हो गया है और शूद्रों अर्थात श्रमिक वर्ग को मतदान द्वारा प्रशासनिक पदों के लिए चुना जाता है। जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान न होने के कारण ऐसे व्यक्ति जीवन का उद्देश्य जाने बिना अपनी सनकवश नियम बनाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कोई भी सुखी नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धुजगत्पते गोपेशगोपिकान्तराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमोऽं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राजा बेन की कथा इस चौदहवें अध्याय में है। मैत्री मुनि विदुर को बता रहे हैं कि कैसे जब महाराज अंग चले गए, वो मिले नहीं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महाराज अंग दुखी होकर कहीं चले गए, सबने ढूंढा लेकिन मिले नहीं। तो अब जब राजा नहीं रहे तो जो ऋषि मुनि वहाँ उपस्थित थे उन्होंने देखा कि राजा की अनुपस्थिति में रक्षा करने वाला कोई नहीं है और फिर लोग स्वतंत्र और असंयमी हो रहे हैं। तो यहाँ राजा के कर्तव्यों को कुछ श्लोकों में कहा गया है। प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं। पहले कुछ श्लोकों में, पहले वैसे छठे श्लोक तक तो केवल वेण के जो अत्याचार हैं उसको दिया गया है कि कैसे वेण को राजा बनाया और वो फिर अत्याचारी हुआ। और उसके बाद सातवें श्लोक से आगे वर्णन है कि कैसे ऋषि मुनियों ने सोचा कि अब इसको रोकना चाहिए, इसके अत्याचार को। और फिर आगे के भाग में वे जाकर उससे बात करते हैं और वेण फिर स्वीकार नहीं करते और अंत में वेण का वो वध कर देते हैं। और वेण के वध के बाद फिर उनके शरीर से उनके पाप कर्मों को निकाल कर फिर पृथु महाराज को प्रकट कराते हैं। तो इस अध्याय में इतना वर्णन है। पृथु महाराज का वर्णन अगले अध्याय में आएगा। तो अभी तक हम लोग जो ध्रुव महाराज की कथा सुन चुके हैं, अब पृथु महाराज की कथा होगी। फिर पृथु महाराज की कथा के बाद आगे चलकर प्रचेताओं की और राजा प्राचीन बहिर अर्थात पुरंजन उपाख्यान होगा। तो यहाँ पर वर्णन है कि राजा के ना होने से या राजा के सक्षम नहीं होने से कैसे प्रजा में अराजकता फैलती है। जैसे यहाँ श्लोक में वर्णन है कि जब प्रजा की रक्षा करने वाला नहीं रह जाएगा तो लोग स्वतंत्र हो जाते हैं और साथ ही साथ असंयमी हो जाते हैं। तो राजा को बहुत मजबूत होना, बहुत कठोरता से राज्य करना, कड़ाई से राज्य करना बहुत आवश्यक है। अगर राजा कमजोर है तो फिर प्रजा भी प्रगति नहीं कर पाती। तो जब ऐसे भृगु आदि मुनि ने सोचा तो फिर उन्होंने कहा कि अब सुनीता के जो पुत्र हैं वेण, उनको राजा बनाना चाहिए, क्योंकि और कोई उनके पास चारा नहीं था। वैसे वो जानते थे कि वेण ये तो योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी इस समय अंग महाराज चले गए थे तो वेण को राजा बनाया गया। और जब वेण राजा बने जिस समय, तो क्योंकि वे क्रूर थे, योग्य नहीं थे, तो उस समय ऐसा वर्णन किया गया है कि जैसे ही वेण राजा बने, जितने चोर लुटेरे थे वो सब डर कर भाग गए। आश्चर्य की बात है ना, कभी कोई अच्छा राजा बनता है, चोर लुटेरे डर के भाग जाए तो ठीक है, एक क्रूर एक राजा बना तो उससे क्यों डर कर भाग गए? क्योंकि सबसे बड़ा चोर जब राजा हो जाए तो बाकी चोरों को तो भागना पड़ता है, एक का ही राज्य चल सकता है। तो सारे चोरों ने सोचा कि अरे ये तो इतना क्रूर व्यक्ति है, ये राजा बन गया तो अब तो हमें भागना पड़ेगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हालांकि वेण कोई अच्छा राजा नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी क्रूरता के कारण कम से कम चोर लुटेरे तो भाग गए, वो बहुत अच्छा हुआ, बाकी कोई अच्छा चीज नहीं। लेकिन फिर वेण ने धीरे धीरे सारे धार्मिक कार्यों को बंद कराना शुरू कर दिया, यज्ञ बंद करा दिए, जो भी लोग धर्म के कार्य करते थे उनको बंद करा दिया, सब जगह से नाश करने लगा और बड़ी क्रूरता से राज्य करने लगा। तो जब धार्मिक कार्य बंद हो गए, सारी धार्मिक क्रियाएं बंद हो गई, तो लोगों का जीवन अच्छा नहीं रहा। एक राजा के लिए क्या कर्तव्य हैं, किसे अच्छा राजा कहा जाता है, ये हमें जानना चाहिए। प्रभुपाद इन कई तात्पर्यों में तुलना कर रहे हैं कि एक राज्य की, अच्छे राज्य की, और आजकल के आधुनिक समाज में जो राज्य हो रहा है, तो एक अच्छे राजा के क्या कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य एक अच्छे राजा का है कि वो व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन में धार्मिक नियमों का कड़ाई से पालन करे। जैसे हम लोग युधिष्ठिर महाराज के जीवन में देखते हैं, युधिष्ठिर महाराज राजऋषि कहलाते हैं। राजऋषि अर्थात जो राजाओं में ऋषियों के समान हैं, अर्थात जो व्यक्तिगत तौर पर बड़ी कड़ाई से धर्मों का पालन, धर्म का पालन करते हैं, धर्मों के नियम का पालन करते हैं। तो इसीलिए राजा के लिए पहली योग्यता ये है कि वो कड़ाई से अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर धर्म का पालन करे। इसके द्वारा वो एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेगा समाज में। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस्त तद एवे तरो जना। जैसे श्रेष्ठ लोग कार्य करते हैं उनका पालन फिर बाकी लोग करते हैं। तो इसीलिए राजा का कर्तव्य सबसे पहला है कि अपने जीवन में कड़ाई से नियम का पालन करे, धार्मिक नियमों का। जैसे युधिष्ठिर महाराज के जीवन के कई प्रसंगों में हम देख सकते हैं, एक ऐसा प्रसंग जहाँ युधिष्ठिर महाराज जा रहे हैं, घर को त्याग दिया, घर को, राज्य को सबसे उनको बाहर कर दिया गया, वन में जा रहे हैं। जब उनको वनवास हो गया 12 वर्ष का, तो जब वो जाने लगे तो उस समय कई ऋषि मुनि उनके साथ चले, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने मना कर दिया, ब्राह्मणों को मना कर दिया, आप नहीं आइए साथ में। तो उन्होंने पूछा, अरे हम क्यों नहीं आए, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, नहीं, मैं तो वन में जा रहा हूं, मेरा सारा राज्य छिन गया, धन नहीं है, मैं आपका पालन नहीं कर पाऊंगा। तो ऋषि मुनियों ने कहा, कोई बात नहीं, हम लोग तो जंगल में रहेंगे, फल फूल खा लेंगे, आप हमारी चिंता नहीं करना। तो युधिष्ठिर ने कहा, नहीं, आप भले रह लेंगे, लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं एक गृहस्थ हूं, मेरा कर्तव्य है आपका ध्यान रखना। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हालांकि जो ब्राह्मण थे, जो साधु सन्यासी थे, वो कह रहे थे, आप हमारी चिंता मत करो, हम अपना संभाल लेंगे, कैसे, हमको जंगल में रह लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा, नहीं, मैं गृहस्थ हूं, मेरा कर्तव्य है, अगर आप मेरे साथ हैं तो आपका पूरा ध्यान रखना, और वो मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर नहीं है, राज्य नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, सब कुछ चला गया, तो मैं कैसे आपका ध्यान रखूंगा। तो इसीलिए आप वापस चले जाइए। तो देखिए यहां ऐसी अवस्था में भी जहां उनका सब कुछ छिन गया, उस अवस्था में भी युधिष्ठिर ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने वो तो जान तो कह सकते थे मैं क्या करूं, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं कहां से धर्म का पालन करूं। तो उन्होंने धर्म का पालन किया। इवन जब वो वन में रह रहे थे, दुर्वासा मुनि उनके पास आए, तो उस समय भी इतने सारे शिष्यों को देखकर उन्होंने मना नहीं किया युधिष्ठिर महाराज ने कि अरे अब मेरे पास क्या है, मैं तो खुद जंगल में रहता हूं, आप कहीं और जाइए। उस समय भी पालन किया। तो एक राजा के लिए ये पहला गुण है कि वो अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर हर अवस्था में धर्म के नियमों का पालन करे। दूसरा गुण जो राज्य राजा में होना चाहिए कि उसको अपने जो नागरिक हैं उनके भले के लिए, उनके भलाई के लिए या राज्य करने के लिए हर तरह का त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये दूसरा गुण राजा में होना चाहिए। पहली चीज वो अपने व्यक्तिगत तौर पर धर्म का कड़ाई से पालन करे, नियम का अपने जीवन में। दूसरा चीज राजा के लिए आवश्यक है कि वो अपने नागरिकों के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार हो। ये हम श्री रामचंद्र जी के जीवन में देखते हैं। रामचंद्र जी जब एक धोबी ने कुछ कह दिया सीता देवी के प्रति, रामचंद्र जी ने सुना कि कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं कि अरे सीता एक वर्ष तक रावण की लंका में रही, फिर भी रामचंद्र ने स्वीकार कर लिया, ठीक है वो रामचंद्र हैं, हम तो ऐसे नहीं हैं। तो केवल इतना सुना तो उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि सीता देवी के साथ रामचंद्र जी ने ठीक नहीं किया, अरे कैसे निकाल दिया उनको ऐसी अवस्था में, वो भी जब वो गर्भवती थी, ऐसी अवस्था में उनको जंगल में छोड़ा है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं कि रामचंद्र जी ने एक राजा के रूप में कितना बड़ा त्याग किया। क्या उनको प्रेम नहीं था सीता देवी से? और जब से सीता देवी गई, श्री रामचंद्र ने वनवासी का जीवन जिया। वो कभी फिर बिस्तर पर सोए नहीं, जमीन पर सोते थे, कंदमूल खाते थे, ये सोचकर कि सीता जंगल में है तो मैं कैसे राज्य का भोग कर सकता हूं। तो ये उदाहरण है कि रामचंद्र जी ने प्रजा के हित के लिए कितना बड़ा त्याग किया। तो ये त्याग के लिए आवश्यक रहना चाहिए। अगर आवश्यक हो तो कुछ भी त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए राजा को। फिर वो चाहे अपनी पत्नी हो, अपना पुत्र हो, अपनी सुविधा हो, कुछ भी त्यागने के लिए। वैसे जब हम लोग ये चर्चा राजा की कर रहे हैं तो हमारे मन में ये आ सकता है कि क्या आवश्यकता है चर्चा की, अब तो राजा लोग नहीं हैं और ना ही हम में से कोई राजा बनने वाले हैं, राइट? ऐसा तो नहीं है कि एक दिन अचानक कोई आकर हमारे सर पर मुकुट रख देगा कि अभी पुराना जमाना फिर से आ गया, आज से आप कर्नाटका के राजा हैं या भारत के राजा हैं, तो फिर कैसे होना चाहिए हमें पता चलना चाहिए। तो क्या लाभ है इसका सुनने का, बताइए? इसका सुनने का लाभ ये है कि भले हम राजा ना हों, लेकिन जब भी हम कोई ऐसी स्थिति में हों जहां हमारे अधीन कुछ लोग हों, हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे परिवार में एक पिता के अधीन उनके बच्चे रहते हैं, या एक पुरुष के अधीन स्त्री रहती हैं, बच्चे रहते हैं, परिवार रहता है, तो वो राजा है उस परिवार का और उसको ये गुण होने चाहिए। या फिर किसी संस्था में कोई प्रमुख होते हैं, उनके अधीन कुछ लोग रहते हैं, तो उनको ये गुण लाने चाहिए। या फिर गुरु हैं, गुरु के अधीन शिष्य होते हैं, तो उनको ये गुण लाने चाहिए। तो इसलिए ये नहीं सोचिए कि ये हमारे लिए तो नहीं है, हम तो कभी राजा नहीं बनेंगे। ये हम सब के लिए है, क्योंकि कभी ना कभी हम सब ऐसी अवस्था में आएंगे जहां कभी हमारे अधीन कोई ना कोई होंगे, और उस समय ये गुण हमें सहायता करेंगे। चाहे हम भक्ति में हो, भक्ति में ना हो, भक्ति में रहकर भी हम मंदिर में हो, मंदिर को संभालें, समाज को संभालें, शिष्यों को संभालें, संस्था को संभालें, तो अपने अपने स्तर पर ये सब राजा हैं, गुण ये सारे होने चाहिए। इसीलिए ऐसे गुणों को कह रहे हैं जो हम लोग अपने जीवन में अपना सकें। तो ऐसे हर व्यक्ति को जिसे कोई अधिकार मिले, जिसे किसी कुछ लोगों की जिम्मेदारी मिले, तो उसको ये गुण अपनाने चाहिए। फिर वो परिवार भी हो सकता है, समाज हो सकता है, मंदिर हो सकता है, संस्था हो सकती है, शिष्य हो सकते हैं। तो दूसरा गुण ये होना चाहिए कि वैराग त्याग के लिए तैयार रहे, जैसे रामचंद्र जी ने किया। इतना बड़ा त्याग सीता देवी का उन्होंने किया केवल प्रजा के हित के लिए। अर्थात जो एक राजा है उन्हें अपने अधीन अपनी प्रजा के लिए कोई भी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो केवल सुविधा चाहिए, मैं राजा हूं, जो मैं कहूंगा वो होगा। वो ठीक है, लेकिन वो कब होगा? जब वो एक अच्छा आदर्श, एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो इसलिए दूसरा कारण, पहला था कि राजा हर अवस्था में अपने व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत स्तर पर धर्म का पालन करे, छोड़े नहीं। दूसरा, अपने अधीन रहने वालों के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार हो, ये उसका होना चाहिए राजा को। चाहे कोई भी, उसको अपने पुत्र को त्याग करना पड़े, अपनी पत्नी का त्याग करना पड़े, राज्य का त्याग करना पड़े। तीसरा लक्षण, तीसरा गुण एक राजा में होना चाहिए कि वो सुविधाएं प्रदान करे अपने नागरिकों को या अपने आश्रितों को। सुविधाएं प्रदान करे, दो तरह की सुविधाएं, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक सुविधा भी प्रदान करे जिससे शरीर के स्तर पर, सामाजिक या शारीरिक स्तर पर लोग सुखी रह सकें, जैसे अन्न इत्यादि देना, ये देखना कि अन्न सब मिल रहा है या नहीं। अगर राजा के राज्य में अन्न नहीं मिल रहा तो प्रजा कैसे धार्मिक कार्यों को करेगी, आध्यात्मिक प्रगति कैसे करेगी? तो इसलिए राजा को देखना चाहिए कि अकाल नहीं पड़े, अन्न मिल रहा है, अन्य चीजें हैं, जल है। तो भौतिक शरीर को बनाए रखने के लिए जो सुविधाएं हैं उसको प्रदान करना, और दूसरा आध्यात्मिक सुविधाओं को, अर्थात आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो सुविधाएं चाहिए उनको भी प्रदान करना। तो ये तीसरा कर्तव्य है राजा का कि वो दोनों प्रकार की सुविधाएं अपने आश्रितों को प्रदान करें, भौतिक स्तर पर ताकि वे लोग शरीर को बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें, सुखी रहें, और उस अवस्था में फिर आराम से आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सुविधाओं को प्रदान करना। तो आध्यात्मिक सुविधा क्या है? राजा को मंदिर बनाने चाहिए, धर्म में लगे हुए लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, धर्म के प्रचार के लिए जितना हो सके उनको मदद करनी चाहिए, ये राजा का कर्तव्य है। तो ये तीसरा कर्तव्य राजा का हो सकता है कि वो सुविधाएं प्रदान करे आध्यात्मिक और भौतिक स्तर पर। और चौथा कार्य राजा को करना चाहिए रक्षण, रक्षा करना। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है राजा का। क्षत्रिय का अर्थ है जो शत यानी हानि होने से रक्षा करता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। तो जो रक्षा करे वो क्षत्रिय है, और साधारणतः राजा जो होते हैं वो क्षत्रिय हुआ करते हैं। तो ये चौथा कार्य राजा का होना चाहिए कि वो संरक्षण प्रदान करे, रक्षा करे अपने सभी आश्रितों की, अपने नागरिकों की। ये उसका कर्तव्य है ताकि वे लोग बड़े सुखी रहकर भगवान की भक्ति में लग सकें। तो आध्यात्मिक सुविधाओं को जब वो प्रदान करता है तो आध्यात्मिक सुविधाओं में क्या सुविधा आती है? आध्यात्मिक सुविधा में ये सुविधा आती है कि वो देखे कि लोग भगवान की भक्ति कर सकें, उसके लिए व्यवस्था करवाए, वो देखे कि लोग भगवान के नाम का उच्चारण कर सकें, वो देखे कि ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा साधुओं को वो बुलाए अपने राज्य में, जिससे लोगों की भक्ति बढ़ सके, एक ऐसा भक्ति का वातावरण वो बनाए जिससे लोग स्वतः भक्ति कर सकें, और साथ ही साथ पूर्ण रूप से संरक्षण प्रदान करे। ऐसा राजा जो बड़ा शक्तिशाली होता है, उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी रहकर, निश्चिंत रहकर भगवान की भक्ति कर सकती है। राजा शक्तिशाली नहीं है, संरक्षण प्रदान नहीं कर रहा है, तो सदैव भयभीत रहेगी प्रजा। तो ये राजा के प्रमुख कर्तव्य हैं, लेकिन राजा वेण इन कर्तव्यों को नहीं कर रहे थे। ना तो वो संरक्षण प्रदान कर रहे थे, ना अपने स्तर पर धार्मिक नियमों का पालन कर रहे थे, ना ही कोई त्याग करने के लिए तैयार थे, और ना ही कोई सुविधा प्रदान कर रहे थे। दूसरी ओर जो सुविधाएं थी उनको समाप्त कर रहे थे अपनी क्रूरता के कारण। तो जब ये बहुत बढ़ गया तो सारे साधु एक साथ आए और वो चर्चा करने लगे। ये सोचने लगे कि हमने तो वेण को राजा बनाया था क्योंकि हमने देखा कि बिना राजा के स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन ये तो और बुरा हो गया, ये तो और पापी निकला। और फिर वो सोचने लगे कि इतना ही नहीं, ऐसे पापी का संग करके हम सब भी नरक में जाएंगे, हमारे लिए भी पाप होगा, अपराध होगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि अगर कोई पापी व्यक्ति है उसका संग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि संग करने से भी हम दूषित हो जाते हैं, हमें पाप लग सकता है। तो इसीलिए साधु जो होते हैं वो सदैव दूसरों का भला सोचते हैं। तो पहले उन्होंने जनता का भला सोचा और राजा बना दिया, लेकिन अब फिर से सोच रहे हैं कि हमने गलती कर दी, ये वेण को राजा बना दिया, जो चल रहा था वो भी बंद हो गया, कोई यज्ञ नहीं कर पा रहा, कोई भक्ति नहीं कर पा रहा, तो इससे तो अच्छा था पहले। तो सबने सोचा क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर समाज में भक्ति नहीं होगी, भगवान की पूजा इत्यादि आराधना नहीं होगी, तो फिर कैसे लोगों का जीवन अच्छा हो। तो देखिए ये साधुओं के लक्षण हैं। भक्तों के लक्षण क्या हैं भगवान के, वो सदैव दूसरों के लिए सोचते हैं। एक वैष्णव का ये प्रमुख लक्षण है। वैष्णव वो नहीं है जो केवल अपने लिए सोचता है, वो वैष्णव नहीं हो सकता, वो भक्त नहीं हो सकता, वो प्रचारक नहीं हो सकता, क्योंकि करुणा नहीं है हृदय में। करुणा का अर्थ है दूसरों के लिए सोचना। तो ये साधु होते हैं, अभी सब एक साथ आए और सोचने लगे कि क्या होगा, इतने सारे लोगों को उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो कष्ट सह रहे हैं, सारे यज्ञ बंद करा दिए, भक्ति बंद करा दी, आराधना बंद करा दी, तो क्या करना चाहिए, कैसे इनका उद्धार होगा। तो ये देखिए साधुओं के लक्षण है। नैमिषारण्य में भी जब सारे साधु मिले और हजार वर्ष तक यज्ञ कर रहे थे, तो उनका उद्देश्य यही था कि आगे आने वाले जो समाज है उनका कैसे उद्धार हो सके। और इसीलिए देखिए जब उन्होंने प्रश्न पूछे तो उन प्रश्नों में यही प्रश्न था कि अब श्री कृष्ण चले गए धरा धाम को छोड़कर, धर्म भी चला गया, तो अब कैसे लोगों का उद्धार होगा कलयुग में, क्या करेंगे, उनके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, इसको बताइए। तो ये साधु हैं जो हर अवस्था में दूसरों के लिए सोचते हैं। तो जितना हम अपने लिए सोचते रहेंगे उतना हम कृष्ण से दूर रहेंगे। जितना हम दूसरों के लिए सोचेंगे सही दृष्टि में, दूसरों के लिए तो समाजवादी लोग भी सोचते हैं जो समाज का कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन वो भक्ति से नहीं जोड़ते, भगवान से नहीं जोड़ते। कई लोग इस समाज में, इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। एक हैं जो उनको पूंजीवादी कहा जाता है, पूंजीवादी मतलब जो धन इकट्ठा करना चाहते हैं बस, तो उनको दूसरों की चिंता नहीं। दूसरे होते हैं जो समाज की चिंता करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत समाज में सुविधा इत्यादि प्रदान करना चाहते हैं। लेकिन उनसे श्रेष्ठ हैं भक्त जो सही मार्ग पर लोगों को लगाना चाहते हैं। तो इसीलिए सारे साधु एक साथ आए और उन्होंने सोचा कि कैसे करना चाहिए। अगर ये समाज में वर्ण नहीं रहेगा, आश्रम नहीं रहेगा, तो समाज की व्यवस्था बुरी हो जाएगी। ये तो वेण तो सब कुछ समाप्त कर देगा। समाज को चलने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग समाज को चलाने में है, और वो है सहयोग। जब तक हम आपस में सहयोग नहीं करते एक दूसरे से, तब तक हम जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। फिर वो चाहे भक्त समाज हो या साधारण समाज, सहयोग आवश्यक है। ये कहना चाहिए कि ये चाबी है उस ताले को खोलने के लिए जिससे हम आगे प्रगति कर सकें। तो इसीलिए जैसे चार वर्ण चार आश्रम होते हैं, तो सारे साधु चिंता करने लगे कि ये लोग कैसे आपस में रहेंगे, क्योंकि इनके बीच का समन्वय टूट रहा है, सहयोग टूट रहा है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है हम सब के लिए, भक्तों के रूप में सीखने के लिए, कि हम सबको आपस में सहयोग करना सीखना है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि अगर आप मुझे प्रेम करते हो तो आपका प्रेम मुझे दिखला सकते हो आपस में सहयोग करके। अगर आप आपस में सहयोग नहीं कर रहे हो, इसका अर्थ है आप मुझसे प्रेम नहीं करते। तो इसी तरह ये साधु सोच रहे हैं कि ये जो चार वर्ण हैं, चार आश्रम हैं, कैसे एक दूसरे से सहयोग करेंगे। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए भक्तों के रूप में जो समाज की कामना प्रभुपाद ने की, जिसको वो स्थापित करना चाहते हैं, वो एक ऐसा समाज है जिसमें हर व्यक्ति भगवान को केंद्र में रखकर एक दूसरे से सहयोग करना सीखे। और सहयोग का आधार क्या हो या सहयोग का उद्देश्य क्या हो, भगवान की प्राप्ति। तो हमारा सहयोग इसलिए नहीं होना चाहिए भक्तों का कि हम कोई भौतिक सुविधा को बढ़ा दें। हमारा सहयोग होना चाहिए कि कैसे हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। उसके लिए हर एक व्यक्ति को दूसरे से सहयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो ब्रह्मचारी हैं उन्हें अन्य आश्रमों से, जो गृहस्थ हैं उन्हें अन्य आश्रमों से, वानप्रस्थ सन्यासी को अन्य आश्रमों से, उनको तैयार रहना चाहिए कि किस तरह सहयोग कर सकें। ब्रह्मचारी अपने आश्रम में रहते हुए अच्छी तरह शास्त्र का अध्ययन करें, प्रचार करें। गृहस्थ अपने आश्रम में रहते हुए भगवान की भक्ति करें, धन अर्जन करें, ताकि बाकी तीनों जो आश्रम हैं वे आराम से भगवान की भक्ति कर सकें। सन्यासियों का कर्तव्य है कि वो उस ज्ञान को, उस साक्षात्कार को जो उन्होंने प्राप्त किया है, उसको सारी दुनिया में प्रचार करें। तो ऐसे हर कोई अपने अपने कार्य को करता रहेगा तो समाज में एक व्यवस्था बनी रहेगी, समाज भगवान की ओर जाएगा। इसीलिए सहयोग बहुत आवश्यक है। सहयोग प्रमुख अंग है किसी भी समाज को एक रखने के लिए। जहां सहयोग की भावना चली जाती है तो फिर वो समाज टूट जाता है। कैसे, जैसे उदाहरण देते हैं, भारत में पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आज भी कई स्थानों पर अभी भी हैं। संयुक्त परिवार का अर्थ क्या होता था कि हर कोई व्यक्ति एक जो प्रमुख हैं घर के, उनको सहयोग करते हुए उस घर में रहते थे, उनके सहयोग से उनके आदर सम्मान को करते, तो वो बना रहता था। लेकिन जब धीरे धीरे कलयुग बढ़ा तो लोगों को वो भावना नहीं रही, तो फिर वो घर टूट गए। आज सब अकेले अकेले रहते हैं। इसीलिए मन में द्वेष भरे हुए हैं, भाई भाई के प्रति द्वेष, या फिर अन्य परिवार के लोगों के प्रति द्वेष। एक भाई अपने अलग परिवार को रखना चाहता है, दूसरा भाई अलग रखना चाहता है, कोई एक नहीं रहने चाहते। माता पिता को कहीं बाहर फेंक दिया जाता है, या एक घर में उनको छोड़ दिया जाता है, दूसरे घर में बेटा चला जाता है, तीसरे घर में कहीं और, तो टूट जाता है ये सब, सहयोग की भावना नहीं। इसी तरह ये जो भक्त समाज है, ये एक संयुक्त परिवार की तरह है जिसके प्रमुख हैं श्री कृष्ण। तो जब हम सब उनको सहयोग करते हुए, उनको केंद्र में रखते हुए सहयोग की भावना से आगे बढ़ेंगे तो समाज एक रूप से आगे बढ़ेगा। और फिर जब समाज कृष्ण की ओर बढ़ेगा तो बाकी उसमें रहने वाले अपने आप कृष्ण की ओर जाएंगे। देखिए, जब संयुक्त परिवार होते थे तो संयुक्त परिवार में जब कोई उत्सव मनाए जाते थे, कोई और चीजें होती थी, तो सबको उसका लाभ मिलता था। मान लीजिए कोई योग्य नहीं भी है किसी कार्य के लिए, लेकिन वो भी उसमें भाग ले लेता था। इसी तरह जो भक्त समाज है, ये पूरा समाज अगर सहयोग से भगवान की ओर बढ़ रहा है, हम भी उसके अंग हैं, भले हम योग्य नहीं हैं, लेकिन समाज की शक्ति से हम भगवान की ओर जा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है। अपने बल से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम दूसरों के बल से हम भगवान की ओर जा सकते। और हमारे लिए करने के लिए क्या है? केवल सहयोग। अगर हम भक्तों को सहयोग करें, हो सकता है हमारी कोई योग्यता नहीं है, ना ही हमें ज्ञान है, ना ही भक्ति है, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन अगर हम सहयोग कर रहे हैं भक्तों को, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्ति में प्रगति हो जाती है। इसीलिए भगवान कपिल कहते हैं, प्रसंगान अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एष साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। ये किसके लिए कहा गया? कि वो व्यक्ति जो बड़ा आसक्त है इस जगत में। भगवान कपिल कहते हैं, सारे बुद्धिमान व्यक्ति ये जानते हैं कि इस जगत में आसक्ति बंधन का कारण है, अजरम पाशम बांध कर रख देता है। अगर आसक्त हैं आप किसी चीज से, सैव साधु सुकृतो, लेकिन वही आसक्ति अगर आप साधुओं के प्रति लगा दें, भक्तों के प्रति लगा दें, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, ये निश्चित है। तो कितनी सरल बात, कितनी सरल मार्ग दिया है भक्ति का भगवान कपिल ने। बस भक्तों को सहयोग करते हुए समाज में बने रहें, अपने आप मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल सकता। तो ये हम सबको चाहिए, इसीलिए सहयोग बहुत आवश्यक है। तो उन सब ने चर्चा की और सोचा कि अब हमें जाकर समझाना चाहिए राजा को कि ये ठीक नहीं है जो वो कर रहे हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं कि आगे के श्लोकों में सारे जो ऋषि मुनि हैं, 14वें श्लोक से आगे वर्णन आता है कि ऋषि मुनि सब जाते हैं वेण के पास और उसको बड़े नम्रता से समझाते हैं। उसको कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, और अगर जीवन में भगवान की भक्ति ना हो तो फिर वो जीवन पतन का कारण हो जाता है। इसीलिए भगवान को श्रेष्ठ मानना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और फिर देखो, ये सारे देवता ये भी तो भगवान की भक्ति करते हैं और ये हमें सारी सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे वर्षा होती है इत्यादि। तो अगर ये सारे यज्ञ बंद हो जाएंगे तो फिर देवी देवता क्या करेंगे, कैसे वो लोग हमें, हमारे ऊपर कृपा करेंगे, और फिर भगवान कैसे कृपा करेंगे? इसीलिए आप ये सब बंद मत कीजिए। तो वेण ने जब ये सुना तो वेण उनको कहता है कि आप सबकी बुद्धि बहुत कम है, आप सब दिखने में बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, साधु हैं, बुद्धि नहीं है। क्यों? अरे आप किसकी बात कर रहे हो? आप तो ऐसे व्यक्ति हो कि अपने जैसे एक स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ चली जाए, आप वैसे हो। आपका पालन पोषण कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। और आप मुझे छोड़कर भगवान के पास जाना चाहते हो, उनको कुछ अपना मानते हो, उनको स्वामी मानते हो। अरे मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान कर रहा हूं, और ये देवी देवता क्या हैं? देखिए कितना अहंकार आ गया वेण को। और ये देवी देवता क्या हैं? चाहे शिव हो, ब्रह्मा हो, इंद्र हो, चंद्रमा हो, जो भी हो, वो सब राजा के शरीर में वास करते हैं। अर्थात वो क्या कह रहा था कि तुम्हारे सारे देवता, तुम्हारे सारे भगवान मैं हूं, केवल मेरी पूजा करो, वेण ने कहा। तो अब तक ऋषि मुनि बड़े शांत थे, बड़े नम्रता से बात कर रहे थे, लेकिन जब देखा कि ये भगवान के प्रति अपराध कर रहा है, कह रहा है भगवान है ही नहीं, मैं ही भगवान हूं, किसकी तुमने बात कर ली, तुम किसको स्वामी मानते हो, गलत कह रहे हो, तो फिर ऋषियों से रहा नहीं गया, उनको क्रोध आ गया। जब तक उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था ऋषियों ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब भगवान के प्रति उन्होंने गलत बात कही, ऋषियों को क्रोध आ गया, तुरंत ऋषियों के मुख से निकला मार डालना चाहिए इसको। ये अगर जीवित रहा, ये व्यक्ति जो भगवान का भी विरोध कर रहा है, भगवान को नहीं मान रहा, इसको जीवित रहने का कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, और प्रतिनिधि ही अगर भगवान को नहीं माने, अपने स्वामी को त्याग दे, तो उसको मार डालना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा इसको मार डालना चाहिए। और फिर वैसे वर्णन किया गया कि वेण तो वैसे ही मर गया था, क्योंकि उसने भगवान के प्रति अपराध कर दिया। और अब ऋषि मुनियों ने केवल अपने हुंकार से उसको मार डाला, बस कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लगे। प्रभुपाद लिखते हैं ये भक्तों की शक्ति है, केवल हुंकार से, केवल शब्द ध्वनि निकालकर मार डाला, वेण मर गया। और उसके बाद वो सब चले गए वहां से। सुनीता को बहुत दुख हुआ, पुत्र था, जैसा भी था, ऐसा होता है ना कि अगर पुत्र बुरा भी हो, पापी भी हो, दुराचारी भी हो, लेकिन फिर भी माँ को बड़ा प्रेम होता है, पुत्र है। हाँ, अगर ब्रह्मचारी बन जाए तो फिर प्रेम नहीं रहता है, वो अलग बात है, है ना। शराब पिए, मांस खाए, जुआ खेले, कुछ भी करे, मेरा लड़का ब्रह्मचारी जाए बन जाए तो इसने कुल का नाम खराब कर दिया, ऐसा होता है आजकल। तो सुनीता को बड़ा प्रेम, और उसने देखा कि हाय हाय मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, मार दिया, कुछ कर तो सकती नहीं थी, क्या करती साधुओं को, साधुओं ने मार दिया था ऐसे। और जब सारे साधुओं ने मिलकर मारा तो कोई विरोध करने वाला नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि सारे नागरिक परेशान थे उससे, ऐसा नहीं था कि कोई उसके चाहने वाला था कि अरे साधुओं को आके बोलता तुमने क्या किया। दरअसल सब नागरिक अपने मन में कह रहे थे तो बहुत पहले करना चाहिए था साधुओं को, बहुत अच्छा हुआ। इससे हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सीखते हैं, हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, ऐसा ना हो कि मृत्यु के समय लोग मन में कहें बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हुआ गया ये। हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए कि सही में लोग हृदय से उस व्यक्ति के जाने के दुख करें कि नहीं ये बहुत अच्छा व्यक्ति था। ऐसा नहीं कि जैसे वेण, एक भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, कितने आश्चर्य की बात है। देखिए राजा को मार दिया, ऐसे नहीं कि कोई साधारण व्यक्ति को मार के चले गए थे वो लोग, राजा को मार दिया। और किसने मारा? साधुओं ने। और किसी ने विरोध नहीं, कोई मंत्री ने, कोई सेना ने, किसी ने विरोध नहीं किया। क्यों? सारे लोग विरोधी थे वेण के, सब सोच रहे थे बहुत अच्छा हुआ, बड़ा क्रूर था, पापी था, अत्याचारी था, मारा गया, अच्छा हुआ। तो सारे साधु चले गए, लेकिन सुनीता ने उसके शरीर को रखा, कुछ लेप वगैरह लगाकर, उसकी इच्छा नहीं हुई, इतनी आसक्त थी पुत्र से कि उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया, रख लिया कि नहीं मेरा पुत्र है। खैर साधु वगैरह चले गए, समय हो गया। एक समय साधुओं ने देखा कि बड़ी अराजकता फैल रही है समाज में, जितने चोर लुटेरे हैं वो शक्तिशाली हो गए हैं, और वो ही नहीं प्रायः सारी प्रजा चोर हो गई है। तो उन्होंने सोचा कि ये राजा के ना होने से है। तो ऐसा होता है जब समाज में कोई प्रमुख नहीं होता है तो फिर सारे चोर लुटेरे ये राजा बन जाते हैं, ये प्रमुख बन जाते हैं, और फिर जब चोर लुटेरे राजा बनेंगे तो क्या राज्य चलेगा। जैसे जब महाभारत का युद्ध हुआ, सारी दुनिया से राजा आए, कोई वापस नहीं गया। तो मान लीजिए कि कोई राजा आए होंगे इजिप्ट से, वो कभी वापस ही नहीं गए क्योंकि मारे गए यहां पर। महाभारत तो एक वर्ल्ड वॉर थी, विश्व युद्ध था, सारे विश्व से सेनाएं आई थी युद्ध करने, कोई दुर्योधन की तरफ तो कोई अर्जुन की तरफ। तो जितने भी राजा आए वो सब मारे गए, कोई भी बचा नहीं, वापस नहीं पहुंचा, किसी को पता नहीं क्या हुआ, ऐसा वर्णन है। बाहर के देशों में लोग कुछ लोकगीत गाते हैं, और उन लोकगीतों में वर्णन करते हैं, एक स्त्री का अपमान हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन उनके लोकगीतों में उसके बाद का कोई वर्णन नहीं है। आज भी वो इतना ही गाते हैं कि एक स्त्री का अपमान हुआ, एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, बस उसके बाद क्या हुआ किसी को पता ही नहीं, क्योंकि लोग वापस नहीं पहुंचे, कौन बताएगा जाके क्या हुआ। एक भी सैनिक बचा नहीं था, पूरे महाभारत के युद्ध में 7 लोग बचे थे केवल, पांडव 5 और 3 लोग दुर्योधन की तरफ से, बाकी तो कोई बचा ही नहीं। कृपाचार्य बचे, कृतवर्मा बचे और अश्वत्थामा बचा, और इधर 5 पांडव, बाकी सारे तो मारे गए। थोड़े बहुत जो बचे थे उनको अश्वत्थामा ने रात को मार दिया, धृष्टद्युम्न इत्यादि बच गए थे और द्रौपदी के पुत्र, ये सब उनको तो मार दिया रात में, तो कोई बचे ही नहीं। तो मान लीजिए कि कोई राजा वहां से आया था, अब वो वापस ही नहीं गया, थोड़े समय नहीं गया, तो चोर लुटेरे जो थे वो राजा बन गए, और राजा बनते ही सबसे पहले क्या किया, नियम बदलो। जैसे मान लीजिए कोई राजा है, उसने नियम बनाया हुआ है कि नहीं इस यहां पर चोरी करना गलत है, कोई चोरी नहीं करेगा। अब कोई चोर राजा बन जाता है तो सबसे पहला नियम क्या बनाएगा, चोरों को दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि सब अपने ही भाई है ना चोर, तो दंड नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए आजकल जो बाहर के जगत में दूसरे देशों में हम नियम देखते हैं, ऐसे नियम जो धर्म के विरुद्ध हैं, जिनको अनुमति दी गई है, वो केवल इसलिए हैं ताकि ऐसे चोर जो राजा बने उन्होंने नियम बदल दिए, विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। ये बाहर के जगत में बड़ा कॉमन है, तो लोग सोचते कैसे आ गए पाश्चात्य जगत में, ऐसे आ गए क्योंकि जब तक युधिष्ठिर महाराज राज्य करते थे, परीक्षित महाराज, तो सारी पृथ्वी पर धर्म था, कहीं अधर्म नहीं था। कृपया अपने मोबाइल को बंद रखिए, आपके कारण सारे लोगों का ध्यान उस पर जा रहा। तो युधिष्ठिर महाराज जब राज्य करते थे, परीक्षित महाराज जब करते थे, तब तो सारा धर्म था, फिर अचानक अभी हम देखते हैं सारी दुनिया में अधर्म को धर्म कैसे मान लिया गया है, चोर उचक के राजा बने, धर्म को बदल दिया। तो इसी तरह यहां पर ये लोग देखने लगे कि शायद ये सारे चोर, और उसके कारण सारी प्रजा भी वैसे ही हो जाती है। तो उन्होंने देखा सब प्रजा हो रही है तो क्या करना चाहिए, राजा की तो आवश्यकता है। फिर उन्हें पता था कि अभी तक वेण का क्रियाकर्म नहीं हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि भले ही वेण इस वंश में एक कांटे की तरह था, बुरा व्यक्ति था, दुराचारी था, अत्याचारी, अधर्मी, लेकिन फिर भी इनका जो वंश है बहुत महान है, बड़े बड़े भक्त आए हैं, ध्रुव महाराज के वंश में आ रहे हैं, तो बड़े बड़े भक्त आए हैं और हो सकता आगे भी भगवान के अवतार आएंगे इसी वंश में, तो इसीलिए हमें इसी के शरीर से पुत्र को उत्पन्न करना चाहिए। तो वे लोग सब आए, तो वेण के शरीर में तो अधर्म भी था और धर्म भी था, धर्म थोड़ा तो होगा ही, ऐसा तो नहीं था कि जरा भी धर्म का पालन नहीं। तो सबसे पहले वो अधर्म को निकालना चाहते थे, तो उन्होंने उसकी जंघा, उसका मंथन किया। देखिए शास्त्रों में जब हम ये सब चीजें पढ़ते हैं तो हमें लगता है कल्पना है ना, कि किसी के जंघा को, पैर को मंथन, मंथन समझते हैं आप लोग, दही को मथते हैं ना, चर्निंग, तो उसको मंथन कर दिया और उससे एक बालक प्रकट हो गया। तो जब हम लोग सुनते हैं तो कल्पना ही लगता है ना, ये हो सकता है क्या, आज होता है, हमारे पैर को करके देखिए क्या निकलता है, कुछ नहीं, केवल गंदगी, हड्डी, मांस, और मंथन करेंगे क्या नहीं, यही सब गंदगी निकलेगी। तो इसलिए हमें इस पर विश्वास नहीं होता कि ये कल्पना, कल्पना नहीं है। आज हमारा विज्ञान बड़ा पिछड़ गया है, हम लोग तो कहते हैं हमने प्रगति, प्रगति नहीं है, पिछड़ गया है। इसलिए जो लोग पहले बड़ी आसानी से कर लेते थे, आज हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर पाते, प्रयास कर रहे हैं, जैसे लोग क्लोनिंग का प्रयास कर रहे हैं, क्लोनिंग मतलब जैसा व्यक्ति है वैसा ही और एक प्रकट कर देना, टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयास कर रहे हैं कि मां के गर्भ के बाहर भी बच्चे को उत्पन्न करने का प्रयास, ये सब तो महाभारत आदि पुराणों में पहले से दिया, तो कोई नई बात नहीं। टेस्ट ट्यूब बेबी, दुर्योधन टेस्ट ट्यूब बेबी था, उसका जन्म ही, द्रोणाचार्य टेस्ट ट्यूब बेबी थे, द्रोण में जन्म हुआ था उनका, इसलिए उनका नाम द्रोण हुआ। तो ये सब हमारा विज्ञान इतना आगे था पहले कि लोगों को आश्चर्य नहीं होता था, आज जब हम सुनते हैं तो हमें आश्चर्य होता, अरे ऐसा भी होता था। तो उन्होंने उनके जंघा का मंथन करके उसमें से काला बालक, इतना सा छोटा सा, तो उसके हाथ पांव अंदर घुसे हुए हैं, काला है भुजंग ऐसा एकदम, वो निकला। उसका नाम था बाहुक, बाहुक नाम दिया। वो पाप, उसने सारे जो वेण के पाप थे उसको स्वीकार किया, इसीलिए ऐसा था। तो उसने जन्म लेते ही ऋषि मुनियों से पूछा, बताइए मैं क्या करूं। तो ऋषि मुनि को बड़ा गुस्सा आ रहा था उसको देख के, क्योंकि पाप का मूर्तिमान, सारा पाप निकला हुआ वेण के से। सर बैठ जाओ, निषाद, निषाद मतलब बैठो संस्कृत में, तो बैठ जाओ। तो बैठने का ऐसे कहा तो उनकी वो जाति हुई जिसको निषाद कहते हैं। निषाद मतलब वो जो जंगल में रहते, नियमों का पालन नहीं करते, बड़े निम्न स्तर पर हैं, जंगली जानवरों को या फल मूल खावा कर वो लोग जीवित रहते हैं, तो निषाद कहा जाता है, उन्हें अच्छी श्रेणी नहीं माना जाता। तो ऋषि मुनियों ने कह दिया बैठ जाओ निषाद, निषाद मतलब निषाद हो गए फिर। तो आगे चलकर उनकी जो पीढ़ी हुई वो निषाद बने। और फिर अब उनके शरीर को उन्होंने सारे पाप को निकाल दिया, इसने पाप ले लिया। अब अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे कि कैसे उनके हाथों से, वेण के हाथों से उसको भी मंथन करके फिर उन्होंने भगवान के अंशावतार और श्रीमती लक्ष्मी देवी के अंशावतार को प्रकट किया, अर्थात पृथ्वी महाराज और अर्ची देवी प्रकट हुई, और फिर आगे उनके राज्य का वर्णन किया जाएगा।